أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. اور ہم نے نبی نوح علیہ الصلات والسلام کو حکم بھیجا انسنع الفلک، کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی جیسا ہم بتائے ویسا بناؤ. وحینا فإذا جاء امرنا وفارت تنور، وحینا جیسا ہم بتائے، جیسا ہم تمہیں بتلائے وہی کرے ویسا بناؤ. فإذا جاء امرنا، اور پھر جب ہمارا حکم عذاب کا آ جاوے، وفارت تنور، آپ کشتی میں بیٹھ جاؤ، اور اس کی نشانی کیا ہے؟ تنور سے پانی ابلنے لگے. فسلک فیہا، فسلک فیہا، اور کشتی میں بٹھائیں ہر قسم کے جوروں کو دو دو کر کے. وأهلك، اور اپنے اہل کو بھی. إلا من سبق عليه القول منهم، ہاں مگر جن پر عذاب کے بارے میں ہم لکھ چکے ہیں. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، اور مجھ سے مت کہنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا. انہم مغرقون، وہ تو بے شک غرق ہی کر دیے جائیں گے. آج کے سبق میں آپ کے سامنے پارہ نمبر 18 سورہ مؤمنون کی آیت پڑھی، آیت نمبر 27. گزشتہ کل یہ بات میں نے سمجھائی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام والسلام نے 950 سال تک، 950 ایئرز تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا، مسلسل کنٹینیوسلی، لیلا و نہارا، ڈے ٹائم نائٹ ٹائم، یوز ٹو کال دا پیپل ٹوڈز اللہ تبارک و تعالی. اور کل میں نے ایک بات بتائی تھی کہ کہیں بھی قرآن میں جہاں جہاں نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، کہیں نوح علیہ السلام کے واقعے میں نماز کا، روزے کا، یا زکوٰۃ کا، یا حج کا، یا معاملات کا، یا معاشرت کا، یا اور کسی قسم کا ذکر ہے ہی نہیں. 950 ایئرز تک ایک ہی دعوت دیتے رہے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک ہی بات، وشب اللہ، اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، do not worship anyone else beside Allah. ایک ہی دعوت تھی رات دین، اور دعوت بھی عجیب، جیسے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کھاتے بھی تھے تو ان کو یہی فکر ہوتی تھی میں کب جاؤں دعوت دوں کسی ایک کو، دو کو، تین کو. یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے گھاس کاٹنے کے لیے یا لکڑیاں بیچنے والے لکڑیاں کاٹنے کے لیے جب جنگل میں جاتے تھے تو یہ ان کے پیچھے پیچھے جاتے تھے، وہ لکڑیاں کاٹتے تھے، گھاس کاٹتے تھے، یہ ان کو دعوت تبلیغ کرتے تھے جب تک وہ کام میں لگے رہتے تھے. وہ کھیت میں کام کرنے والے ہوتے ہیں صبح سے شام تک، فارمر جس کو کہتے ہیں، कभी फार्म में चले जाते उनके पास और उनको सुबह से शाम तक यही जब तक वो होते थे दावत देते, भाई बात मान लो, मेरी बात मान लो, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत न करो। ये पांच बुजुर्ग है ना, ये अल्लाह के बंदे हैं। वद्दौ वला सुआ यगूस व याऊस व नसर, ये तो अल्लाह के बंदे थे, नेक बंदे थे। ये खुदा नहीं है, खुदा तो वो है जिसने आसमान बनाया, जमीन बनाई, पहाड़ बनाए, समंदर बनाए, सब वो खुदा। गमी में खुशी में भी अगर कहीं खुशी का मौका होता था तो वहां जाकर लोग तो दुल्हन को डोली को रवाना करते, ये दावत शुरू कर देते थे, अब्दुल्लाह वाला तुशरीकु भी शैया या मालिकुम मिन अल्लाह। गमी में भी बाद मुफस्सिर ने लिखा है, जैसे इमाम राजी ने लिखा है कि दफन करने वाले मुर्दे को दफन करते और ये उनको दावत दे रहे हर वक्त, लैल व नहार, रात दिन अल्लाह की दावत दावत दावत। जैसे कल बताया, एक सिंगल दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर पत्थर न बरसाए हो। इट्स नॉट इजी फॉर 950 इयर्स व्हाट अल्लाह मेंशन इल्ला 50 नामा, अगरचे उनकी उम्र तो 1300 साल की, मुहद्दिसीन ने लिखा, लेकिन 950 इयर्स तक मार खाते हुए, ये नबियों का काम है सबर करना, सबर करना, सबर करते 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 जिंदगी गुजर जाती है। जब सबर का पैमाना लबरेज हो जाता है तब वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर दुआ करते हैं। 950 इसको कम है, हमारी में किसी के 70 से 80 साल से ज्यादा उम्र नहीं होती, कितनी पीढ़ियां बदल चुकी होगी, कितना जनरेशन, लेकिन दावत देते रहे, बराबर से दावत देते रहे। और नबियों का काम है देना, लेना नहीं। तबलीग में यही होता है, आदमी अपनी जान और अपना मान लगा करके लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, लेते नहीं हैं। हमने बहुत सारी जमात को देखा है, जब जाने का दिन होता है तो वो जो पीछे पैसे डालने की जगह है उसमें वो जाते हुए कुछ 50-100 पाउंड डाल जाते हैं सब मिलकर, अपना ही पैसों से खाना लाते हैं, पकाते हैं। हाँ, किसी ने दावत दे दी वो अलग बात है, वरना ये तो बिल्कुल ऐसा काम है जो खालिस काम है, ये अंबिया अलैहि सलाम का काम है, दावत और तबलीग। तबलीग का काम लोगों ने उसका उल्टा मतलब ले लिया है, ये तबलीगी है, ये तबलीगी है। तबलीग का काम तो अंबिया अलैहि सलाम का है, सारे अंबिया अलैहि सलाम का काम। और तबलीग का मतलब ही हमारे वालिद साहब अजीब समझाते थे, तबलीग में पहले ता है, तकलीफें आएगी, रात दिन तकलीफ आएगी, गश में जाओ तो भी, किसी को दावत दो तो भी, कहीं भी चले जाओ कुछ ना कुछ तो सुनाएंगे। अब आजकल तो माहौल ठीक है, आप इंडिया पाकिस्तान में चले जाओ, आपको पता ही नहीं कि ये सामने वाला क्या है, कौन सी मजहब का साथ ताल्लुक रखता है, अगर आपने उसको दावत दे दी 2-4 गाली वैसे ही पड़ जाएगी आपको। मेरा वाक्य मैं सुनाता रहता हूं, जब मैं छोटा था अरबी डोम या सोम में, मुझे भी बयान करते आता नहीं था, तो साथ में ये फजाइल आमाल ले जा, उस वक्त तो उसका नाम तबलीग निसाब था, तबलीग निसाब नाम था, फजाइल आमाल तो बाद में नाम बदल दिया चूंकि लोग तबलीग के नाम से चीरते थे। हालांकि हदीस में फल युबल्लिग अशाहिद अलगाइब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज में यह फरमाया कि जो लोग हाजिर हैं वो तबलीग कर दे मेरी बात की, जो लोग गायब हैं उनको पहुंचा दे मेरी बात। तबलीग के माना ही अल्लाह रसूल की बात को पहुंचाना है, ये तबलीग का माना है, जो आदमी सही रास्ते पर है उनको सही बात बतलाकर सीधे रास्ते पर लाना है। तो मैं ये ले गया था, उन्होंने कहा ईशा के बाद तालीम कीजिए। अब मेरे पास तो कोई किताब थी नहीं, मैं छोटा बच्चा था, अभी तो तरावी सुनाने के लिए जाता था। अरे साहब, मैंने जब तालीम शुरू की तो फजाइल नमाज शुरू कर दी, तो उन्होंने कहा ये कौन सी किताब है, मैंने कहा तबलीग निसाब, ये हमारी नहीं है, तो चमूरियों की किताब है। क्या कहा, ये हमारी नहीं है, तो तबलीगियों की किताब है, हमारी नहीं है ये। वहां पर तबलीग वालों को चंबूर बोलते, क्योंकि हाथ में चंबू लेके वो रात वजू के लिए रास्ते में कहीं गुसल के लिए जरूरत पड़े चंबू लेके। ये तो हमारी नहीं, तबलीगियों की किताब है। मैंने कहा इसमें तो सब कुरान हदीस लिखा हुआ है। चलो ठीक है, नहीं हमारी किताब लाओ। मुझे पता नहीं था, ऐसी मस्जिद में चला गया, कैसे लोग बैठे, रूप पर तरह भी होती थी, गर्मी बहुत होती थी उस जमाने में, पंखे वगैरह कुछ नहीं होता था, फर्ज नीचे पढ़ के ऊपर तरह भी पढ़ते थे 20 रकात, अल्हम्दुलिल्लाह अकेला पढ़ाता था। तो उसके बाद उन्होंने, दूसरे दिन मैंने सोचा यार उनकी किताब पे कहां से लाऊं, लाऊं कहां से उनकी किताब। तो फिर मैंने क्या किया, शुरू के 4-5 पन्ने फाड़ दिए और इधर से भी फाड़ दिए, सारा तबलीग का नाम ही निकाल दिया मैंने। और दूसरे दिन मैंने फजाइल दुरूद की तबलीग शुरू कर दी, यानी मैंने उसमें फजाइल दुरूद खोला, वो मेरे पढ़ना शुरू किया एक पेज पर। वो मुझे बोलता और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो, मैंने 5 या 6 सफे पढ़ लिए। हाँ ये अपने वालों की किताब है। मैंने कहा ये वही है जो कल थी, सिर्फ मेरी गलती यह है कि मैंने शुरू और आखिर के अंदर में पन्ने फाड़ दिए, वरा को फाड़ दिए। मतलब अच्छा तुम लोग भी दुरूद को मानते हो, मैंने कहा हम तुमसे ज्यादा मानते हैं, हम दुरूद क्यों नहीं पढ़ते। बात भी अजीब, लोगों के दिमाग को ऐसे वॉश कर दिया गया। देखिए ना 950 साल तब तगली कर रहे हैं, ये एक दिन नहीं है, 950 साल। हमारी मस्जिद में मुसल्ली आते थे, इंतकाल कर गए हाजी साहब, आप जानते होंगे, वो यहाँ आते थे दावत के लिए भी, हम एक दिन ले गए थे। उन्होंने मुझे कहा मैंने आपके पीछे पहली जुमा पढ़ी कुछ साल पहले, कोविड से पहले, फिर मैं जुमा पढ़ के दूसरी मस्जिद में गया, उन लोगों ने पूछा तुमने जुमा कहाँ पढ़ी, उन्होंने कहा मस्जिद कुबा में, कहा काफिर हो गए। उनको क्या कहा तो काफिर हो गए,
अभी भी बोलते
हैं। हाँ अभी बोलते हैं वो, उन्होंने मुझे वाक्य सुनाया, कहा क्यों मैं काफिर हो गया, कहा वो लोग दुरूद नहीं पढ़ते, दुआ नहीं करते नमाज के बाद, नहीं वो तुमसे अच्छी दुआ करते हैं, तुमसे ज्यादा दुरूद पढ़ते हैं, हो ही नहीं सकता है। फिर वो दूसरे हफ्ते 7 आदमी को लेकर आए, इस मस्जिद की बात कर रहा हूं मैं, 7 आदमी को। सो उन्होंने सबने मुझे, उन्होंने कहा कि ये हमारे 7 आदमी हैं, आज नमाज यहां पढ़ने आए हैं, पहली बार आए कुबा में। मैं कहा ठीक, कैसा लगा भाई, ये तो आप लोग तो अच्छा बहुत ज्यादा दुरूद पढ़ते हो, बहुत अच्छी दुआएं करते हो नमाज के बाद, अब हम यहीं यहां पर आएंगे। मैंने कहा देखो तुम जाओगे तो फतवा देंगे आपके कुफर का भी, ऐसा कह देना पहले मैं काफिर था मुसलमान हो गया, यानी पहले मैं मानता नहीं था अब मानता हूं, कुफर का माना भी है। तो इस तरह की बातें हैं, लोगों के दिमाग ऐसे धो दिए गए हैं। तबलीग तो नबी अलैहिस्सलाम ने कैसी की है, अंबिया अलैहिस्सलाम को कितनी मार पड़ी है। तो तबलीग में पहले ता है, ता लफ्ज ता, तबलीग में पहले ता है, ता का मतलब है तकलीफ आती है इसमें, साहबा पर अंबिया पर तकलीफ बड़ी आई, लेकिन उस तकलीफ में नंबर 2 पर बा है तबलीग में, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर ये अंबिया छोड़ देते, खुद नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मैं मीना में यूं कहता था कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, ओ लोगों तुम अल्लाह का कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, तो पीछे से मुझे पत्थर मारता था, पीछे से मुझ पर पत्थर मारा जाता था, मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे पता था वो मेरा चचा अबू लहब ही है, वो मुझे मार रहा है और कह रहा है इसकी बात नहीं सुनना, उनकी बात नहीं सुनना, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर मैं पीछे मुड़कर देखा तो मेरे अल्लाह का काम अधूरा रह जाता, मार खाता रहा लेकिन तबलीग का काम करता रहा। बर्दाश्त करना पड़ेगा, नबी अलैहिस्सलाम ने कितना बर्दाश्त किया, घर से भी निकाल दिया गया। अभी जुमा की नमाज के बाद में दर्श दे रहा था बुखारी शरीफ का, उसमें ही किताब तफसीर में एक जगह लिखा है जी बात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पर सूरह आले इमरान में ओहद का जिक्र आता है, वहां पर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओहद के मैदान में 70 सहाबा शहीद हो गए, सैयदुश्शुहदा हजरत शुहदा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु बिकेम शहीद। उस बैटल में ओहद में नबी अलैहि सलातो सलाम को पत्थर इतने मारे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो निचले 4 दांत थे उसमें से राइट वाला उसका आधा दांत टूट गया आपका, और आपके चीख से, यहां से, गाल से खून निकलने लगा, इसलिए कि वो जो हेलमेट पड़ी हुई थी उसकी नेल घुस गई यहां और पेशानी में, आपके पेशानी से खून से कपड़े आपके खून वाले हो गए थे और उस खून ज्यादा निकलने की वजह से आप बेहोश हो गए, आप बेहोश हो गए। उन लोगों ने, काफिरों ने ऐलान कर दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने कत्ल कर दिया नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश में आया, आपने ऐलान किया अब ये खून बंद नहीं हो रहा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पानी ला रहे, धो रहे हैं लेकिन बंद नहीं हो रहा है। सैयदा फातिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी ने चटाई को जलाया, मैट्स जो होती है ना, जलाया, जला करके उस जगह पर लगाया, तब जाकर खून बंद हुआ। ये कौन है? इमामुल अंबिया है। क्या को अपने बच्चों की जायदाद के लिए वहां गए थे या अपनी कोई जायदाद लेने गए थे लड़ने के लिए? अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए बर्दाश्त करना पड़ेगा अंबिया अलैहिस्सलाम ने, लेकिन बर्दाश्त ऐसा बर्दाश्त हो कि एक बार जमात में गया, किसी ने गाली दी, अब नहीं जाना, अब गश में नहीं जाना, नहीं, आगे नाम है ना, लगे रहना है, इसमें लगे रहना है, जो भी मिले तबलीग का काम, जो भी मिले। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम जाते ही, मैं कहता हूं अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने भाई, अपने बहन, अपनी बीवी, अपने बच्चे, जो भी है, 3 दिन, 4-10 दिन, जो भी हो, या अपने करीब के जो भी, उसको बताते रहे। एक दिन आपकी बात उसके दिल में बैठ जाएगी, यकीन जानिए। लगे रहना, अपने बच्चों को समझाते रहना, बेटियों को समझाते रहना, बीवी को समझाते रहना, माँ बाप को समझाते रहना, भाई बहनों को समझाते रहो। इंशाअल्लाह आपकी बात का असर यकीनन उसकी दिल पर होगा। जैसे टैप से पानी गिरता है, एक जगह गिरता, एक बार गिरने से सुराख नहीं होता नीचे, लेकिन गिरता रहे तो पत्थर में भी सुराख हो जाता है। आपकी बात होती रहेगी, उसके दिल के अंदर में जाके ऐसी बैठेगी कि यही आदमी आपके लिए सदके जारिया बन जाएगा। लगे रहना पड़ेगा, लेकिन जब लगे रहेंगे तो बाद में यह आता है तबलीग में, यकीन अब पैदा होगा कि इसी काम में अल्लाह की मदद, ये अंबिया वाले काम है, या यकीन पैदा होगा। जब यकीन होगा ना, तब आप कोई भी काम करोगे या दुआ करोगे तो लास्ट में गैन है, गैन तबलीग, तो अल्लाह की गैब से मदद आएगी, नुसरत आएगी। गैबी मदद ऐसे नहीं आती, सहाबा किराम की कुर्बानियों पर वो मदद आती थी कि वो पानी पर चलते थे। ये तो ये जो यहां पर अंबिया अलैहिस्सलाम में से सबसे पहले नबी है, उससे पहले ये हुक्म नहीं था तबलीग का। सबसे पहले नबी नूह अलैहिस्सलाम है, जिन्होंने सबसे पहले शिर्क से दूर करने के लिए, और अल्लाह ने उनको भेजा कि उनको एक अल्लाह की इबादत का हुक्म दो। जैसे मैंने कल समझाया था कि शैतान ने किस अंदाज से उनकी कौम को इन 5 बुजुर्गों के बुत बनवाए, फिर उनके सामने सजदे करवाए, फिर उनसे मांगना सिखाया, लेकिन कितने ईमान लाए। इन हुआ इल्ला रजुलुम बिही जिन्नतुन, वो तो कहते थे, वो क्या कहते थे, ये तो पागल आदमी है, इसकी बात न सुनो, फतरबसु, ये मर जाएगा भी, इंतजार करो, बहुत जल्दी पागल आदमी मर जाता है, खत्म हो जाता है या फिर ठीक हो जाएगा, उसकी बात न सुनो। और एक जगह सूरे कमर में है, शायद सूरे कमर में, मजनून वज़दुजिर, मजनून है ये, वज़दुजिर, धक्के मार के निकालो उसको, धक्के मारो उसको, पुश करो, मजनून वज़दुजिर कुरान में है, धक्के मार कर इनको निकालो। अंदाजा करो कितनी तकलीफ पहुंचाई होगी, लेकिन सारे नबियों को जितनी तकलीफ पहुंचाई उससे ज्यादा इमामुल अंबिया को तकलीफ पहुंचाई है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल इतनी ज्यादा तकलीफ आपको ओहद के मैदान में हुई, कहीं और जगह फरमा उससे भी ज्यादा मुझे तकलीफ ताइफ के मैदान में हुई है, चारों तरफ से लोगों ने मुझे पत्थर मारा, मेरे पूरे बदन से खून निकल रहा था, पूरे बदन से। 950 साल की मेहनत पर, 950 years, he conveyed the message of Allah to the people. How many people accepted Islam? बाइबल में और तौरात में तो लिखा है 9 आदमी, 9 only. उनकी किताब में लिखा है, लेकिन तारीख की किताबों में 80 लिखा है, 84 लिखा है, 90 का भी जिक्र आता है, 90। लेकिन मुअर्रिखीन ने सर्च किया और आज तक सर्च करते रहे, 100 से ऊपर तो है ही नहीं। 950 साल में 950 भी मुसलमान नहीं बने, ओनली अंडर 100 है, अंडर 100। इसी को यहां जिक्र किया, फतरबसु बिहत्ताहीन काल रब्बिन सूरनी। अब तो हजरत नूह अलैहि सलाम हाथ उठाकर अल्लाह से कह रहे हैं, रब्बी ला तजरनी फरदा, ए अल्लाह इसमें से किसी को नहीं छोड़ना। रब्बी ला तजर वो क्या, मिनल काफिरीन दय्यारा, ए अल्लाह जमीन पर एक को भी ना छोड़ना। लेकिन सारे अंबिया अलैहि सलाम ने बद्दुआ कर दी, कौम तबाह हो गई। इमाम अंबिया ताइफ के अंदर में जिब्राइल ने बतलाया, बद्दुआ कर दो, ये दोनों फरिश्ते मौजूद हैं, पहाड़ वाले फरिश्ते, अगर आप बद्दुआ करेंगे दोनों पहाड़ को मिलाकर इनको खत्म कर देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये नहीं तो इनके औलाद ईमान लाएगी। अल्लाह के नबी ने अपनी दुआ, हर नबी को एक दुआ दी गई है, अपनी दुआ को बाकी रखी है, कयामत के दिन जब उम्मत परेशान हाल होगी मैदान हश्र में, अल्लाह के नबी उस वक्त इस दुआ को इस्तेमाल करेंगे, ऐ अल्लाह इस उम्मत का हिसाब शुरू कर दे। और खाली अपनी उम्मत के लिए नहीं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जितने लोग होंगे सबके लिए जनरल हिसाब रेकनिंग के लिए ये दुआ फरमाएंगे। फिर हिसाब के बाद आगे की बात, आगे बहुत सारी हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है। तो अल्लाह पाक ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। क्या कहा, अल्लाह अकबर, वस्नाइल फुल्क, वस्नाइल फुल्क, कश्ती बनाओ, कश्ती बनाओ। अब कश्ती बनाना आसान है, हजरत नूह अलैहि सलाम ने कभी कश्ती बनाई नहीं, अब अचानक नबी है और कारपेंटर बन जाए, कश्ती बनाना है, हजरत नूह अलैहि सलाम कैसे कश्ती बनाएंगे, उनको तजुर्बा नहीं है। लेकिन अल्लाह ने कहा मेरी आंखों के सामने बनाओ, इसका मतलब है अल्लाह की मदद उनके साथ थी, अल्लाह की मदद, जैसी कहूं वाह ना, जैसी मैं बट कहूं वैसी बनाओ, मेरी आंख के सामने। अब आंख कैसी थी अल्लाह की, याद रखो कुरान करीम में और हदीस में जहां कहीं अल्लाह के आजा का जिक्र आता है, हाथ का या जो भी पिंडली का या आंखों का, जमहूर उलमा फरमाते हैं, सहाबे किराम ने भी ऐसी आयतें पढ़ी, ताबेईन ने भी पढ़ी, तबे ताबीन, इसके बारे में हमें यकीन रखना है कि वो अल्लाह की शान के मुताबिक है, हम सिर्फ इतना मानते हैं आंख है। कैसी है हमें पता नहीं है, अगर कोई आदमी इसमें घुसता है तो हो सकता है कि ये ईमान से हाथ धो दे। वह उखरु मुतशाबिहात फअम्मल लजीना फी कुलूबिहिम ज़ैगुन फयत्तबिऊना मा तशाबहा, ये मुतशाबिह आयत है, ये सब हमें पता नहीं है, इसके मीनिंग और मफहूम और टॉपिक क्या मतलब है हमें पता नहीं, हम सिर्फ इतना जानते हैं अल्लाह ने कहा मेरी आंखों के सामने, या मेरा हाथ उनके हाथ पर था, यदुल्लाही अलल जमा, या पिंडली का जिक्र साख, जो भी हो ये सब अल्लाह की शान के मुताबिक है, हमें सिर्फ यकीन रखना है। कैसा है वो अल्लाह जानता है। अब ये कश्ती किससे बनाएंगे, कागज की बनाएंगे, प्लास्टिक की बनाएंगे, कैसी है, लकड़े की या लोहे की कश्ती। शाम के अंदर दरख्त लगते हैं जिसको गोफर कहते हैं, गोफर हमारे यहां जैसे सागवान है, शीशम है, पुख्तून में वहां क्या कहते हैं, अखरोट की लकड़ी बहुत सारी है, मजबूत मजबूत जो होती है, शीशम का वुड जो होता है, सागवान का इंडिया में मशहूर है। इसी तरह शाम के अंदर में ट्रीज होते थे जिसको गोफर कहते हैं, वो दरख्त की लकड़ी बहुत मजबूत होती है। कहा इस लकड़ी से कश्ती बनाना है, काट काट कर इसे। अब ये कश्ती कितनी बड़ी है इसके बारे में कहीं जिक्र तारीख में है, कुरान में नहीं, हदीस में नहीं, लेकिन तौरात में है, इसी तरह तारीख में है कि वो 300 हाथ लंबी थी। कितनी लंबी थी, 300 हैंड्स वाज लॉन्गर, अप्रोक्सीमेटली 500 फीट की है। 500 फीट, इतनी लंबी वो कश्ती थी और उसकी चौड़ाई जो है वो 50 हाथ की थी, 50 हाथ की, और उसकी डेप्थ जो थी कितना नीचे अंदर, कितनी अंदर में, वो 30 हाथ की थी, 30 हैंड की, इतनी बड़ी कश्ती थी, इतनी बड़ी कश्ती। और उसके भी मंजिले थे, कहीं किचन भी बनाना, सबको खिलाना पड़ेगा ना, ऐसे भूखे मर जाएंगे नहीं तो। वो वसीम फरमाते हैं किचन की अलग जगह, जानवरों की अलग जगह, फिर इंसान की, इस किस्म के दर्जात रखे थे, क्योंकि ये कश्ती 6 months and 17 days तक पानी के ऊपर रही है, 6 महीने 17 दिन तक पानी पर रही, इसलिए कि इतना बड़ा तूफान न पहले आया कभी, ये पहली मर्तबा इतना बड़ा फ्लड आया, इतना बड़ा कि कश्ती 6 महीने 17 दिन ऊपर रही पानी के ऊपर। और ये तूफान बाज लोग कहते हैं एक जगह में आया, नहीं पूरी दुनिया में आया। एक हिमालय पहाड़ के बारे में आपको पता है ना कितना ऊंचा है, उसके ऊपर से भी मुफस्सिर फरमाते पानी गया, जो तारीख से पता चलता है। ये जूडी जो है 17,000 feet ऊंचा पहाड़ है, 17,000 feet ऊंचा पहाड़ है, जिस पहाड़ पर ये कश्ती स्टॉप हुई, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया फस्तवत अलल जूडी। ये जूडी पहाड़ जो है आज उसका नाम एरारात है, एरारात उस पहाड़ का नाम है। वो जो पहाड़ है उसके ऊपर तक पानी गया, वहां पर कश्ती रुकी थी उस पहाड़ पर। कितनी ऊंचा था वो पहाड़ का, समंदर से 17,000 feet ऊंचा पहाड़ है ये, कितना पानी आया होगा। अल्लाह ने कहा अब ये कश्ती तो बनाई, लेकिन सखीर मिन हो, आते जाते लोग हजरत नूह अलैहि सलाम का मजा कर रहे हैं, अभी तक नबूवत का दावा करता भी कारपेंटर बन गया, सखीरों कहां चलाएगा, पानी तो है नहीं हमारे पास, समंदर कहां चलाएगा तू कश्ती, कश्ती तो बना दी, कहां चलाएगा इतनी बड़ी कश्ती। बाद लोग कहते होता ना हमारे पास तालाब, उसमें चलाओ, यानी हजरत नूह अलैहि सलातो सलाम का उन्होंने मजाक शुरू किया। सूरह हूद में इसका जिक्र है, इन तस्खुरु मिन्ना फइन्ना नस्खुरु मिनकुम कमा तस्खुरून, तुम लोग मेरा मजाक कर रहे हो, एक दिन आएगा तुम्हारा भी मजाक किया जाएगा। हाँ नूह अलैहि सलाम ने इनसे कहा तुम मेरा मजाक कर रहे हो कि मैं कश्ती कहां चलाऊंगा, एक दिन आएगा कि मैं भी तुमको देखकर हंसूंगा, मजाक करूंगा, तुम लोग हमारा मजाक कर रहे हो। अल्लाह ने फरमाया फाओहैना इलैहि अन इस्नाइल फुल्क बिअयुनिना ववहयिना, जैसा हम कहें हमारी आंखों के सामने कश्ती बना। अब अल्लाह जब बनाने का हुक्म दे तो कैसी कश्ती। फैदा जा अम्रुना, हमारा हुक्म आ जाए अजाब का, अजाब आने वाला है, कैसे पता चलेगा तेरा अजाब आएगा, तो पता तो चलना चाहिए ना। उसके बगैर फरमाया वफारत तन्नूर, इसके अलग अलग तफसीर है। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफुल कुरान में तफसीर मजहरी के हवाले से लिखा है कि तन्नूर तो कहते हैं किसको, जिसमें रोटियां पकाई जा, अरे तुम लोग खाते नहीं रोटी, जाकर कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं तन्नूर में रोटी बनाते हैं, वो तन्नूर है, उसमें तो आग होती है ना, उसमें से पानी कैसे निकलेगा। बाद में फरमाते हैं कि नूह अलैहि सलाम के मकान में तन्नूर था, फरमाया जब तन्नूर से पानी उबलना लगे, ओ याद रखो मेरे भाइयों, जैसा गुना वैसा अजाब आता है। फतेह मक्का में देखो, मक्का वालों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला, अल्लाह पाक ने फिर उनको भी निकाला, फतेह मक्का में वही जमीन अल्लाह के नबी के हाथ में आ गई। कौमे लूत ने उल्टा काम किया, ऐसा जो बिल्कुल जायज नहीं, उल्टा, अल्लाह ने भी उनको उल्टा दिया, हाल यहा सा फिलहाल
वाम तरना अलैहा हिजारत में, ऐसा अजाब किसी पर नहीं आया। ऐसी जमीन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक उंगली से जमीन उठाई और इतने ऊपर ले गए, इतने ऊपर कि काजी सनाउल्ला साहब पानीपति तफसीर मजहरी में लिखते हैं, पहले आसमान के फरिश्तों ने उस दुनिया वालों के मुर्ग की आवाज सुनी। इतना ऊंचा ले गए जिब्रील अलैहिस्सलाम ऐसे जमीन को सबके साथ, ऐसे ऊंचा ले गए, फिर ऊपर से साफ इल्हा आलिया, फिर साफ रहा, पूरा उल्टा कर दिया जमीन को, खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय। और फिर जब ये ऊपर जा रहे थे ऐसे ऐसे ऊपर, वामतरन अलैहि हिजारतन, नाम वाली पत्थर आए, सब पत्थर पर नाम है सबका, इस पर इब्राहिम, इस पर याकूब, इस पर खान, इस पर सराज, सबका ऐसे नाम, नाम के साथ उसको पत्थर लगा, जिसका नाम लिखा है उस हिसाब से पत्थर आसमान से आकर उन पर गिरे और ये मरे, फिर उनको उल्टा कर दिया। ये अजाब है अल्लाह के, जैसे जैसे गुना वैसे अजाब आते हैं, याद रखो। इनका देख आग पकी है ना, तंदूर में तो आग होनी चाहिए लेकिन आग की जगह पानी निकल रहा है, आग में कभी पानी निकलता है, लेकिन अल्लाह पाक ने उल्टा किया, उसमें कहा जब पानी निकले, पानी कितना निकला, ऊपर से भी नीचे से भी इतना पानी, इतना पानी कि 6 महीने तक वो फ्लड बाकी रहा, सब डूब गया, सब खत्म हो गया, सब कुछ, अंदाजा करो। वस्तवद अलल जूदी, ये क्या कह रहे हैं अल्लाह पाक, सुभान अल्लाह, फसलुक फिया मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन, अब कश्ती तो बना दी, उसमें रखना है, ले जाना है, किसको ले जाना है, कहा जो ईमान लाए हैं उनको बिठा दो, मर्द औरत कितने थे, 80-70 जो भी हो, 90 जो भी हो, उनको बिठाओ अंदर में, और जानवर जितने हैं ना जोड़े जोड़े ले लो, कुत्ता कुत्ती, बिल्ला बिल्ली, भैंस भैंसा, गाय बैल, इस तरह जोड़ा जोड़ा ले लो बस, ज्यादा नहीं, क्योंकि आपकी दुनिया आगे चलानी है ना, ये जोड़ा जोड़ा ले लो। तो एक खाने में जानवर को रखा और एक खाने में किचन खाने पीने को और एक खाने में भी जानवर का भी खाना अलग, फिर ऊपर से फिर सारे इंसान जो बैठे हैं उस पर मर्द औरत मिलाकर वो घूमते रहे कश्ती में 6 महीना, कहां उतरेंगे, इसलिए कि पानी ही पानी है, पानी जावे तो जमीन पर उतरे ना, पानी ही पानी है अंदर में भी। फरमा जब बैठ जाओ तो दुआ पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, मालूम होता है जब कभी अल्लाह कोई हमें अच्छे काम या कोई अल्लाह मुसीबत से हमें बचाए तो अल्लाह के सामने शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो। हाँ, हम्द आम है, हर वक्त हम्द पढ़, मुझे ठीक आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फुला काम अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह, और शुक्र वो खास है, खास खास, मेरा एक प्रोजेक्ट था नहीं हो रहा था, हो गया मेरा प्रोजेक्ट माशाल्लाह, या मेरा काम अटका हुआ था, कंटेनर अटका, आ गया, शुक्र करो, 2 रकात शुक्राने की पढ़ो, शुक्र है, ये खास खास है, और हम्द आम है, याद रखो, अल्लाह की हर वक्त हम्द करें, अल्लाह को याद करे। इनको भी कहा गया कश्ती में बैठ गए तो आप दुआ करो अल्लाह ने तुमको बचा लिया है, देखो कौन कौन किसको लेना है, अहले का, आपके अहल को लेना है, इसी अहल पर तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम मिसअंडरस्टूड हो गए कि मेरे अहल में तो मेरा बेटा भी है, कनान जो था ना, वो लोग तो इस्लाम, वो तो मुसलमान हो गए सब, लेकिन बीवी ईमान नहीं लाई, बेटा कनान, 3 बेटे 4 बेटे 3 बेटे वो ईमान ले आए, 3 हाम याफिस वसाम, लेकिन कनान ईमान नहीं लाया, कनान के ईमान न लाने पर तो मेरा बेटा है भाई, अजाब आ रहा है, बच जाएगा, कलमा पढ़ ले, तो उसने भी कुछ ऐसे जुमले इस्तेमाल किए, साउवी इला जबनी यासिमुनी मिनल मा, मैं तो पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊंगा और मैं पानी से बच जाऊंगा, लेकिन जब आ रहा है बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, तो हजरत, बाप तो बाप होता है ना, बाप तो बाप होता है, इन नबनी मिन अहली, तूने कहा है कि अपने अहल को ले लो, अहल हो, जिसे अहली का जिक्र है, अहल में सब आ जाते हैं, बीवी बच्चे सब आते हैं, ये भी मेरा अहल है, मेरा बेटा है, स्टेपसन नहीं है, सही बेटा है ये, इन नबनी मिन अहली, وہی وعدک الحق یا اللہ, تیرا وعدہ سچا ہے, یہ میرا بیٹا ہے, بچا لے اس کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا بیٹا نہیں ہے, انہ عمل غیر صالح, اس کے عمل ٹھیک نہیں تھے. معلوم ہوتا ہے کفر کی وجہ سے اسلام اور کفر میں درار ہو جاتا ہے, میراث بھی نہیں ملتی. باپ اگر کافر ہے, بیٹا مسلمان ہے, تو بیٹے کو باپ کی میراثت نہیں ملے گی, وہ تو کافر. ہاں اسلام بیچ میں پردہ ہے بیٹے کے لیے. کیا کہا؟ فلا تسألني ما ليس لك به علم. اے نبی نو, آج کے بعد ایسا سوال نہیں کرنا, کس سے اللہ بات کر رہے ہیں جنہوں نے 950 ایئرز تبلیغ کا کام کیا, میں اور آپ نہیں ہے, ہم نے تو ایک دن بھی نہیں کیا, ہم نے تو چلا بھی نہیں لگایا. ان کو کہا جا رہا ہے اب ایسا سوال نہیں کرنا ورنہ آپ کو جاہلوں میں سے لگا دیں گے. نعوذ باللہ, کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک, آپ جاہلوں میں سے ہو جائیں گے. فلا تسألني, یعنی ناواقف لوگوں میں سے ہو جائیں. ایسی بات کا سوال نہ کرو, ہمیں پتا ہے یہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح راستے پر چلنے والا نہیں ہے, اس نے ایمان قبول نہیں کیا. جب ایمان نہیں ہے تو آپ کا بیٹا نہیں, حقیقت میں ایمان نہیں ہو تو بیٹا کیسے ہو سکتا. فلا تسألني ما إني أعيذك أن تكون من الجاهلين. کیا لفظ, ڈرنے کا مقام ہے, ڈرنے کا مقام ہے. ایک نبی 950 ایئرز تک ان کو کہا جا رہا ہے بیٹے کو بارے میں دوسری بار سوال نہیں کرنا ایسا, ورنہ آپ ناواقف لوگوں میں کہ ہو جائیں میں سے ہو جائیں گے. اللہ اکبر, توبہ کی انہوں نے, اے اللہ مجھے بچا, اے اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے پتا نہیں تھا. معافی مانگ رہے نوح علیہ السلام, معافی مانگ رہے, میرا میں نے کیا نا جیسا, پھر بھی اللہ مجھے نہیں دیتا, میں نے اتنے نیکی کے کام, پھر بھی اللہ نہیں دیتا, میں رات میں نماز دن میں تہجد پڑھتا ہوں میرا کام ہی نہیں ہوتا, جیسے آج ہم کرتے, میں اتنا عبادت کرتا ہوں, میں قرآن پڑھتا ہوں چلے پر چلے, میرا کام ہی نہیں ہوتا ہے. 950 سال تک دیکھو تبلیغ کی, پھر بھی نہیں جا سکتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول منہم ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون. مجھ سے اب خطاب نہ کرنا, مانگنا نہیں ایسی بات نہ, جنہوں نے ظلم کیا. ظالم کون ہے؟ جنہوں نے کفر کیا. ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے, یاد رکھو. اب یہ کیا ہے؟ انہم مغرقون, یہ سب کے سب غرق ہو گئے, سب ہونے والے یعنی ہو گئے, اس کے بعد ہو جائیں گے سب غرق. کون باقی رہے؟ بیٹا بھی باقی نہیں رہا, بیوی بھی باقی نہیں رہی, وہی تین بہو تھی, تین بیٹے جو سام حام اور یافس, یہ تین تھے, اس اور تین بہو تھی اور دوسرے لوگ ایمان لانے والے تھے. یہ سب جو بھی 90-80 جو بھی الگ الگ تفسیر ہے, وہ سب کے سب بچ گئے. 6 مہینے کے بعد وہ کشتی سے نیچے اترے. تو اب اللہ ان کو کیا کہہ رہا ہے, جس کا ذکر آگے آ رہا ہے انشاءاللہ کل بیان کریں گے. ٹھیک ہے, اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. یا ارحم الراحمین, یا ذی الجلال والاکرام, یا حنان یا منان, یا دیان یا سلطان, یا قدیم الاحسان. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے, جمعہ کے دین عصر سے لے کر مغرب کے درمیان میں دعائیں قبول ہوتی ہے. تیرے نبی کا فرمان وہ تیرا ہی فرمان ہے. اللہ 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 اللہ, ہم بڑے گنہگار ہیں, اس مبارک وقت میں تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ, ہمارے پاس کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جس کو ہم تیری دربار میں پیش کر سکیں اور معافی مانگ سکیں. یہ تیرے قرآن کو ہم پیش کرتے ہیں, جس کی محبت میں ہم بیٹھ کر سن رہے ہیں, تیرے نبیوں کی بات سن رہے ہیں. وہ تیری ہی بات ہے, اور تیری بات تو جتنا بڑا اتنی تیری بات بھی بڑی ہے. یہ قرآن کریم تیرا ہی, تیرے ہی الفاظ ہے. اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمیں معاف کر دے اللہ, ہمیں معاف کر دے اللہ, ہمیں معاف کر دے اللہ. اللہ ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما, ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, اللہ ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما, ہمارے اقارب و رشتہ داروں کی مغفرت فرما, یا اللہ قریب و دور کے رشتہ داروں کی مغفرت فرما. اے اللہ اس مجمع میں جتنے بیٹھے ہیں اور مکسلر کے ذریعے, ای مسجد کے ذریعے, جہاں جہاں لوگ درس کو سن رہے ہیں, دعاؤں میں شامل ہیں, سب کی مغفرت فرما, سب کی مغفرت فرما. الہ العالمین یا اللہ سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما, پوری دنیا کے مسلمانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ زندوں کی مغفرت فرما, مردوں کی مغفرت فرما. اے الرحم الراحمین یا الرحم الراحمین یا الرحم الراحمین, جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ تا قیامت, تا قیامت ہماری اولادوں, ہم سے لے کر تا قیامت ہماری اولادوں کو کفر سے, شرک سے, بدعات سے, کبائر سے, بگڑنے سے, پھسلنے سے, اے اللہ ان کی حفاظت فرما. ایمان پر باقی رکھنا, ایمان پر باقی رکھنا, استقامت علی الدین عطا فرمانا. اللہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, حافظ قرآن بنا, عالم دین بنا, ناشر قرآن بنا, داعی قرآن بنا, اے اللہ قرآن قاری قرآن بنا. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین, ہم سب کے روزوں کو قبول فرما, ہماری قرآن تلاوت ذکر و اذکار کو قبول فرما, ہمارے فرائض نوافل سنن کو قبول فرما, ہمارے صدقات اور زکات کو قبول فرما, جو دعائیں ہم کر رہے ہیں اپنے فضل سے قبول فرما. ہم تو مستحق نہیں ہیں, ہم تو مستحق نہیں ہیں, تیری ہی توفیق سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو توفیق نہ دے تو کچھ نہیں ہو سکتا, اللہ تیری توفیق سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اے اللہ تو قبول بھی فرما لے, اے اللہ تو انہی کو توفیق دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے. اے اللہ تو نے ہمیں توفیق دی ہے تو قبول بھی فرما لے, قبول بھی فرما لے. اے اللہ بقیہ جو دین باقی ہے تیری عبادت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ اول عشرہ جو رحمت والا ہے ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لینا, اور دوسرے عشرے میں اللہ ہمیں معاف کر دینا اور جہنم سے بچا لینا, جہنم سے بچا لینا. ہماری گردن کو جہنم سے آزاد کر دے, ہمارے اہل و عیال کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے, ہمارے ماں باپ اور اقارب اور رشتہ دار اور بھائی بہن اور سارے مسلمانوں کو جہنم سے آزاد کر دے, جہنم سے آزاد کر دے. اے اللہ گناہ سے بچا لے, گناہوں سے بچا لے, غیبت سے بچا لے, جھوٹ سے بچا لے, چگلیوں سے بچا لے, حسد سے بچا لے. اپنے نیک بندوں میں شامل فرما, اپنے نیک بندوں میں شامل فرما, اپنے نیک بندوں میں شامل فرما, اپنے صالحین بندوں میں شامل فرما. اے اللہ اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما, توابین میں شامل فرما, ذاکرین میں شامل فرما. اے اللہ نماز پڑھنے والوں میں شامل فرما, ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع نصیب فرما, خشوع اور خضوع نصیب فرما. ہماری نمازیں اے اللہ وسوسوں سے بڑی ہو ہے, اللہ ہمیں خوشی اور خضوع والی نماز نصیب فرما. اللہ ہمیں رونا نہیں آتا ہے, دل ہمارے کالے ہو چکے, اللہ ہمیں رونا نصیب فرما. تیرا حبیب پوری پوری رات رو کر بھی اپنی دعاؤں میں کہتا تھا, اے اللہ رونے والی آنکھ نصیب فرما. اللہ ہمیں بھی رونے والی آنکھ نصیب فرما, رونے والی آنکھ نصیب فرما, ذکر کرنے والی زبان نصیب فرما, شکر کرنے والا بدن نصیب فرما, صبر کرنے والا بدن نصیب فرما, شکر کرنے والا دل نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. یا اللہ بیماریوں سے شفا عطا فرما, جو لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما, جو لوگ اپنی اولاد سے, اپنے ماں باپ سے, اپنے گھروں میں اے اللہ آپس میں جھگڑوں میں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ تا قیامت تک جو ہماری نسلیں آنے والی ہیں, اے اللہ فتنوں سے ان سب کی حفاظت فرما, آنے والی بیماریوں سے, رگڑنے والی بیماریوں سے, پریشان مشکل کن بیماریوں سے, اے اللہ ہم سب کی اور ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما. اے اللہ, اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما, ہماری توبہ قبول فرما, ہماری توبہ قبول فرما. یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین, ساری دنیا میں افطاریوں میں, سحری میں جو دعائیں کی جاتی ہیں اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما. حرمین شریفین میں جتنی دعائیں ہو رہی ہیں ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, اولیاء کرام نے, نیک اور صالحین نے उनकी दुआओं में हमारा हिस्सा भी नसीब फरमा, और जितने शुरूर से पना मांगी है उन तमाम शुरूर से हमारी हमारी आल औलाद की और हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इन आमीन कहने वालों की आमीन के साथ हमारी दुआओं को मिलाकर ऐ अल्लाह हमारी तौबा और दुआ को कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद वालिही वसहबी अजमईन।